सुबह का वक्त हवेली में हमेशा कुछ अलग सा होता था। रात की खामोशी जैसे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर बाहर चली जाती और उसकी जगह बर्तनों की खनत, हल्की हल्की बातचीत और रसोई से उठती खुशबू ले लेती। आज भी वही था। डाइनिंग हॉल में लंबी मेज सजी थी, सफ़ेद मेज़पोश, किनारों पर हल्की कढ़ाई और बीच में पीतल का बड़ा सा कटोरा जिसमें ताज़े फूल रखे थे। धूप खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी और हर चेहरे पर अलग अलग भाव उकेर रही थी। सबसे पहले रत्ना देवी बैठी थीं। साड़ी का पल्लू सिर पर ठीक से रखा हुआ, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता जिसमें अनुभव भी था और एक अनकही पकड़ भी। उनकी आंखें पूरे कमरे को एक नज़र में तौल रही थीं, जैसे हर रिश्ते का हिसाब वहीं बैठी बैठी रखती हों। उनके पास शकुंतला बैठी थी, थोड़ी झुकी हुई लेकिन आंखें तेज, हर बात सुनने और हर प्रतिक्रिया पकड़ने वाली। उनके बगल में उनकी रम्या, युवा, सजग और हल्की सी उत्सुक मुस्कान के साथ, जैसे उसे घर के इस नए समीकरण में दिलचस्पी हो। रम्या के सामने विशाल बैठा था, शांत, कम बोलने वाला पर हर चीज पर नज़र रखने वाला। मेज की एक सिरे पर अदिति और आर्यन बैठे थे। दोनों के बीच दूरी नहीं थी, पर कल रात की बातों की हल्की सी परछाई अब भी हवा में तैर रही थी। अदिति ने हल्की रंग के कपड़े पहने थे, बाल खुले नहीं थे आज, सलीके से बंधे हुए। चेहरे पर सौम्यता थी, लेकिन आंखों में अब भी वो भाव था जो इंतजार से पैदा होता है। आर्यन सीधा बैठा था, हाथ में अखबार नहीं, किताब भी नहीं, बस प्लेट के सामने हाथ रखे, शांत लेकिन भीतर कहीं हलचल लिए हुए। विश्वनाथ मेज के मुख्य सिरे साइड में बैठा था। उसकी मौजूदगी अपने आप में घोषणा होती थी, ये घर, ये परिवार और इसके फैसले। शामली उसके पास खड़ी थी और मधु लगातार इधर उधर घूमते हुए सबको परोस रही थी, कभी पराठे, कभी सब्जी, कभी गरम चाय। मधु, दही इधर रख दो, शामली ने हल्के स्वर में कहा। मधु ने सिर हिलाया और कटोरी अदिति के पास रख दी। कुछ पल तक सिर्फ खाने की आवाज़ें थीं। चम्मच प्लेट से टकराए, चाय की प्याली रखी गई और हवेली अपनी सुबह में पूरी तरह जाग गई। फिर विश्वनाथ की आवाज़ गूंजी, ठहरी हुई लेकिन सीधी। आर्यन, उसने कहा, मैंने क्या सुना है, तुमने अदिति के प्लान को मना कर दिया? कमरे में जैसे एक पल को सब रुक गया। आर्यन का हाथ थम गया, उसने तुरंत सिर उठाया, चेहरे पर हल्की घबराहट साफ थी। पापा, आपसे ये किसने कहा, उसने जल्दी से पूछा। शकुंतला ने आंखें तरेरी, रत्ना देवी ने चुपचाप चाय की चुस्की ली। किसने कहा ये जरूरी नहीं, विश्वनाथ ने शांत स्वर में कहा, ये बताओ क्या बात सही है? आर्यन ने गहरी सांस ली। पापा, मैंने बस अभी के लिए मना किया है, उसने संयम से कहा। हम दोनों के एग्जाम हैं, पढ़ाई पहले जरूरी है। उसकी बात खत्म होते ही मेज पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। शामली सब सुन रही थी। रम्या ने अदिति की ओर देखा, विशाल ने प्लेट से नजर उठाकर एक पल के लिए आर्यन को देखा, फिर वापस झुका। उसी बीच अदिति ने धीरे से बोलना शुरू किया, कोई बात नहीं पापा, उसकी आवाज में नरमी थी। आर्यन सही कह रहा है, अभी पढ़ाई पहले, उसने आर्यन की ओर एक नजर डाली, न शिकायत न दबाव। विश्वनाथ ने भौहें चढ़ाई, उसने अदिति को देखा, फिर आर्यन को। अदिति, उसने कहा, तुम आर्यन को बचाने की कोशिश मत करो, आर्यन का दिल जोर से धड़का, मेरा बेटा है। विश्वनाथ की आवाज में अब हल्की सख्ती थी, ये इसे मैं जानता हूँ, ये सिर्फ जाना नहीं चाहता, यही असली बात है। आर्यन कुछ कहने ही वाला था लेकिन विश्वनाथ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, उसने कहा, लेकिन पढ़ाई के नाम पर रिश्तों को टालना ये भी सही नहीं। उसने मेज पर हल्का सा हाथ रखा। आर्यन, उसने साफ कहा, तुम भले लंबी छुट्टी ना लो लेकिन एक दिन। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। एक दिन के लिए तुम दोनों कहीं घूमकर आ सकते हो और ये मेरा फैसला है। अदिति की आंखें चमक उठीं। विश्वनाथ ने बात आगे बढ़ाई, अब उनका स्वर और भी ठोस था। अदिति इस घर की बहू है, उसने कहा, और बच्ची भी है, इसका दिल मत तोड़ो। रत्ना देवी ने पहली बार सिर उठाकर विश्वनाथ को देखा। शकुंतला कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द गले में अटक गए। जब विश्वनाथ बोलता था तो इस हवेली में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अदिति अपनी जगह से हल्की सी आगे झुकी। थैंक यू पापा, उसने दिल से कहा। उसकी आवाज में खुशी छुपी नहीं थी। विश्वनाथ ने बस सिर हिलाया। शामली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, जैसे उसे पता था ये पल अदिति के लिए कितना मायने रखता है। मधु ने चुपचाप पराठा और रख दिया। रम्या ने अदिति को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराहट भेजी। विशाल ने बिना कुछ कहे चाय की चुस्की ली। आर्यन चुप बैठा रहा, उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था, पढ़ाई, जिम्मेदारी और अब पिता का आदेश। उसने धीरे से अदिति की ओर देखा। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका ली। नाश्ता चलता रहा, पर अब उस मेज पर सिर्फ खाना करना नहीं था। वहां रिश्तों की दिशा तय हो रही थी और उसी धूप में उसी मेज के चारों ओर एक नया संतुलन बन रहा था। नाश्ता अब लगभग खत्म हो चुका था। प्लेटों में बचे हुए टुकड़े समेटे जा रहे थे और मधु चुपचाप खाली प्यालियां उठाने लगी थी। हवेली की सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन मेज पर बैठी खामोशी अभी भी टूटी नहीं थी। विश्वनाथ ने चाय का आखिरी घूंट लिया और अखबार मोड़ते हुए बोला, आर्यन आज से टाइम टेबल थोड़ा बदल लेना, पढ़ाई भी होगी और जिंदगी भी। आर्यन ने सिर झुका दिया। जी पापा, उसकी आवाज में अब विरोध नहीं था, बस स्वीकार था। रत्ना देवी ने अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजर सख्त नहीं थी, बस परखने वाली। बहू, उन्होंने कहा, घर संभालना सीख रही हो, अच्छा है। अदिति ने आदर से सिर झुकाया। जी दादी जी। श्यामली ने हल्के से अदिति के कंधे पर हाथ रखा, जैसे बिना शब्दों के कह रही हो सब ठीक है। रम्या उठते हुए अदिति के पास आई और धीमे से बोली, एक दिन भी बहुत होता है। अदिति की मुस्कान और गहरी हो गई। सब लोग धीरे धीरे उठने लगे। आर्यन भी खड़ा हुआ, किताबें उठाई और एक पल को अदिति के पास रुका। एक दिन, उसने धीमे से कहा। अदिति ने उसकी ओर देखा। इस बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। हवेली में कदमों की आवाज़ गूंजने लगी और उस सुबह के साथ दोनों के बीच एक नई शुरुआत चुपचाप आकार ले रही थी।